نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نماز نبوی ہمارا آج ڈے 11 ہے اور جہاں پہ ہم نے پچھلا سیشن پورا کیا تھا وہ کیا تھا سورۃ الفاتحہ یعنی نماز اور سورۃ فاتحہ کا کیا تعلق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز فرض سنت نفل کوئی بھی نماز کہہ لیجئے سورۃ فاتحہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی سری نماز میں تو سب ہی پڑھیں گے اپنے طور پہ جہری نماز میں جس میں کہ پہلی دو رکعتوں میں نماز پڑھانے والے یعنی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس میں بھی پیچھے پڑھنے والے اپنی اپنی جگہ پہ پڑھیں گے صرف دیکھیے پورے دن میں 6 رکعتوں کی بات ہے 2 فجر کی اس میں اونچی پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح مغرب کی شروع کی 2 اور عشاء کی 2 بس باقی میں تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن جب اشکال یا شبہ جس میں ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب امام صاحب کی آواز اونچی آ رہی ہو تو اس کو کیا مقتدی بھی پڑھیں گے تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ جی پڑھیں گے دیکھیں دن کی 17 رکعتیں ہیں نا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو پڑھتے ہیں سبھی پڑھتے ہیں صرف ایک ڈاؤٹ ایک شبہ یا کہہ لیجئے کہ کانٹراڈکشن وہ صرف 6 رکعتوں کا ہے تو کیا حرج ہے پڑھنے میں زیادہ احتیاط ہے کہ نہ پڑھنے میں کوئی یہ تو کہتا بھی نہیں ہے نا کہ پڑھیں گے تو گناہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ تو کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں رہ گئی بات اگر اس کو آپ مختلف ہی کہہ دیں تو صرف ان کے لیے جو کہتے ہیں نہیں پڑھیں پھر بھی ہو جائے گی مان لیتے ہیں تو لیکن اگر پڑھ لیں تو کیا حرج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت اور ایک حدیث ہے جو اصول ملتا ہے کہ داما یوریبک الا ما لا یوریبک اس بات کو چھوڑ دو جس میں شک ہو اور اس کو لے لو جس میں شک نہ ہو تو ہمارا دین بہت ہی خوبصورت دین ہے موافقت چاہتا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ بنا کر مسجدوں کو الگ کرنا اور پھر اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں کو غلط سمجھنا اور وطن اس سے بھی زیادہ کیا کچھ کہنا یہ درست نہیں ہے آج ہم شروع کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ تلاوت کیا جاتا ہے ہم تو شروع سے قل ھو اللہ ہی پڑھتے آئے اللہ وہی قبول کر لے معاذ بن معاذ کی طرح کہ جن کو بڑا پیار تھا سورۃ الاخلاص سے لیکن ہم تو بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی یہ تھا کہ یہ پڑھنی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو بھی خیر بنا دے لیکن صحیح بات ہم نے پیچھے کیا سیکھی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر قرآن پاک میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں اب ہم اس پہ بات کریں گے تو ضروری ہے کہ تلاوت سے پہلے آداب تلاوت دیکھ لیے جائیں کیونکہ اب دن بہ دن جتنے گیجٹ عام ہوتے جا رہے ہیں اتنے آداب کم ہوتے جا رہے ہیں ایک وقت تھا لوگ بڑی بڑے تپاک سے عزت کے ساتھ مصحف کھولتے وضو کرتے دوپٹہ لیتے بیٹھتے پھر پڑھتے اب تو بعض دفعہ دیکھا گیا کہ پڑھنے والے قرآن پاک کو وہیں کرسی پہ چھوڑ کے چلے جاتے جہاں تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تھے اس سے بھی زیادہ بعض دفعہ بیگس پہ رکھا ہوا اور اللہ معاف کرے حرم میں تو کچھ لوگ جوتوں کے بیگ کے اوپر بھی رکھ لیتے ہیں تو آئیے کچھ آداب دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک چاہے نماز میں پڑھا جائے یا ایون ویسے ہی تلاوت کی جائے تو کیا کیا جائے تو بات ہو رہی ہے نماز کی اور نماز میں سورۃ فاتحہ کی اور سورۃ فاتحہ کیسے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرأت کو رک رک کے کرنا ہے ہر جملہ الگ سے ادا ہو بالکل دیکھیے اس وقت بھی میں بات کر رہی ہوں اگر میں کرنا نہیں چاہ رہی اس طرح سے لیکن میں اگر بولتی ہی جاؤں آپ کو کیسی لگوں گی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا نہیں آپ کو ہمیشہ سننے والے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے نا آپ اپنے بچے کے سامنے آ کے بولیں یا بچہ ہی آ کے آپ کو شروع ہو جائے یہ وہ ماما ماما یہ کریں جلدی کریں کیسا لگتا ہے آپ کہتے ہیں اسٹاپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو آرام سے بات کرو تو نماز میں اور خاص طور پہ درس و تدریس کے دوران ہم کیوں اپنی آوازیں بدل لیتے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں لیکن ہم جو ہی درس شروع کریں گے آواز بدل لیں گے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے ایک دم آواز کو بہت موٹی ایون سلام کریں گے تو السلام علیکم یہ مصنوعی انداز لگتا ہے سیدھی سیدھی بات کریں اسٹریٹ پلین وائس جسٹ پلین وائس ٹھیک ہے ڈسٹریکشن نہیں ہوگی چلیے نماز نبوی شروع کریں گے آداب تلاوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہر آیت پہ رکنا چاہیے بس سادہ سا اصول یہ سمجھ لیا اور یہ روایت جو ہے یہ مستد احمد کی 288 جلد 6 और हदीस 26470 है और सही रिवायत है, इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होगा। इससे क्या पता चला कि हमारे असलाफ हर आयत पर रुकते थे और अगर किसी एक मजमून की दो आयतें भी होती तो उनके बीच में भी वक्फ करते थे, और कुरान पाक का मसनून तरीका ये। लेकिन आजकल कुछ कारी हजरात इस तरह तिलावत नहीं करते। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी अपने रब के साथ सरगोशी करता है। इसे ध्यान रखना चाहिए कि वो किस किस्म की सरगोशी कर रहा है, यानी सरगोशी की तरह से पढ़िए, अपनी आवाज़ थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। ये आपकी आम नमाज की बात हो रही है जो हम लोग अपने तौर पे पढ़ते हैं, यानी ऐसे नहीं कि बिल्कुल होंठ भी नहीं हिल रहे। कोई ऐसी थी नमाज पढ़ी, होंठ नहीं हिल रहे, बाद में किसी ने पूछा, करी मैं दिल में पढ़ रही थी। नहीं होती ऐसे, पढ़े होंठ हिले साथ ऐसे, यानी ऐसे सरगोशी की तरह आपको खुद अपनी आवाज़ है, ठीक है। और तुम हालत नमाज में बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत करके अपने साथियों को इस तराब में ना डालो। ये रिवायत मौता इमाम मालिक की 181 है और अबू दाऊद में 1332 है। क्या पता चला कि जब मुख्तलिफ लोग पढ़ रहे हैं, कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं, कोई नफिल पढ़ रहे हैं, कोई अपने तौर पर इबादत कर रहे हैं, तो बहुत ऊंची आवाज से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आम तौर पर इतनी आवाज़ से आप नमाज पढ़ें कि आप खुद भी सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे, बल्कि एक एक हरफ अलग अलग पढ़ते थे। ऐसा मालूम होता था कि छोटी सूरत लंबी सूरत से भी ज्यादा लंबी हो गई। जी, हम तो पढ़ते ही छोटी सूरते हैं, लेकिन उसको भी लंबा करना चाहिए। चुनाचे आपका इरशाद है कि हाफिज कुरान को कहा जाएगा, तुम कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। जिस तरह तुम दुनिया में तरतील और आहिस्तगी से पढ़ते थे, इसी तरह पढ़ते चलो, तुम्हारी मंजिल वहां है जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बड़ी मारूफ रिवायत है, आपने कई दफा इसको सुना होगा। यह अबू दाऊद की रिवायत 1464 है और तिर्मिजी में 2914 और इब्ने हब्बान में 1790 है। ठीक है, तो क्या है कि आपके दर्जे बुलंद होते रहेंगे कुरान पाक की आयतों के साथ साथ। अल्लाह ताला हमें अच्छी आवाज़ों से और अच्छा कुरान पढ़ने की तौफीक दे। एक और रिवायत नोट कीजिएगा, कुरान पाक को अच्छी आवाज़ से पढ़ने का आप हुक्म देते इसलिए कि दिलकश आवाज़ के साथ कुरान पाक पढ़ने में मज़ीद हुसन पैदा होता है। जी, आप देखिए कि आवाज़ बहुत अहम चीज़ होती है। ये अबू दाऊद की रिवायत 1468 है और इब्ने हब्बान की 660 और इब्ने खुज़ैमा की 1551 और 1556 है। अच्छी आवाज़ों के लिए तो लोग किधर किधर नहीं जाते। देखिए, हर एक अपना ज़ौक है ना। अगर आप इस कुरान को अच्छी आवाज़ से सुने और आम कर दें ना, तो यकीन करें आपके बच्चे म्यूज़िक को छोड़कर इस पे आ जाएंगे। तो अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़िए, ये मुराद है। उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो, इसे जहन में महफूज करो और इसे अच्छी आवाज़ से पढ़ो। मुझे इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऊँट के घुटने की रस्सी खोल दी जाए तो वो इतनी तेज़ी से नहीं भागता जितनी तेज़ी से कुरान पाक हाफ़िज़े से निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। ये रिवायत है दारमी की 3351 और सही सनद है 3352 भी है और मुस्तन अहमद की जिल 4 146-150 और इसी तरह इब्ने हबान में 1788। क्या पता चला कि इसका दौर करते रहना चाहिए। हर उस साथी के नाम जिसको अल्लाह ने कुरान पाक हिफ्ज करने का मौका दिया, चाहे जुज़वी तौर पे चाहे कुल्ली, इसकी कदर कीजिए, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह उस दिल को और उस जिस्म को आग में नहीं डालेगा जिसमें उसका कुरान होगा, तो आप इसको पढ़ते रहिए। आज भी कितने लोग ख्वाहिश करते हैं, हसरत करते हैं, लेकिन वो याद नहीं कर पाते, तो अल्लाह ने आपको तो एक दौलत दी है, तो जितना पढ़ा हो उसको मुस्तकिल दौर में रखिए, दोहराते रहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई चीज़ इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जितनी तवज्जो से इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन आवाज़ के साथ कुरान पढ़ना सुना है। जी, ये रिवायत है बुखारी की 5023-5424 और मुस्लिम में 792। पहले ज़रा सा इमेजिन तो करें, कुरान तो वैसे ही इतना प्यारा है, और कोई अच्छे से कारी भी सोच ले, कारी मिशारी, इमाम सुदेस और जिसको जो भी पसंद है, इमाम बसफर, शात्री, हाँ, सादुल गामदी, इदरी सबकर, अब इन सब के टॉप मोस्ट पे लिखिए कि जब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते होंगे क्या समा होगा। जिसके सीने में कुरान उतर जाता है ना, उसकी आवाज़ में सोज आ जाता है। ये कारी हजरात जो अच्छा पढ़ते हैं ना, वो पहले उसको पूरा अपने अंदर जज्ब करते हैं, इसीलिए तर्जमान आता हो तो आवाज़ में बस ऐसे ऊंच नीची होती है, हुस्न नहीं होता। तो अल्लाह के नबी के तो सीने पे ये कुरान उतरा था। आज भी आप देखिए, जिसकी बात आपको दिल में लगे ना, मान लीजिए कि वो दिल पे उतार के फिर बोल रहा है। तो क्या सीखा इस सारी बात में हमने, कि आदाब इख्तियार करने चाहिए। बहुत तेज़ पढ़ना बेअदबी की बात है, फ़ायदा नहीं होगा। ज़बर ज़ेरे छूटने लगती हैं, आखिरी आखिरी लफ्ज़ छूट जाता है लफ्ज़ों का, यानी अक्सर फिर आखिरी हा छोड़ देते हैं या मकसूरा छोड़ देते हैं। तो अपनी नमाज़ों की किरत और इसी तरह आम तौर पे जो तिलावत है उसमें भी इंशाल्लाह हमने बेहतरी लानी है। अब चलते हैं नमाज की मसनून किरत पे। मुनफरिद नमाजी मुराद कौन है? अकेले पढ़ने वाला, यानी जो जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन, सूरत फातिहा के बाद जहाँ से जितना चाहे कुरान मजीद पढ़ सकता है। अलबत्ता इमाम को नमाज पढ़ाते वक्त मुक्तदियों के अहवाल और कवायफ के पेश नज़र ज़रूर एहतसार से काम लेना चाहिए। मुराद है कि अकेले पढ़ें तो ज़्यादा पढ़ें, पूरी इजाज़त है, ज़्यादा पढ़ें थोड़ा पढ़ें, लेकिन जब आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो इस ख्याल से कि पीछे कमज़ोर लोग भी हो सकते हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, हैंडीकैप भी हैं, तो फिर वो ज़रा मुख्तसिर पढ़ाए। ये एक अदब है, मुख्तसिर नमाज पढ़ानी चाहिए फ़र्ज़ों में, लेकिन सुन्नत नफिल आप जितने भी लंबे कर लें। नमाज में सूरत फातिहा के बाद अगरचे हम जहाँ से चाहें कुरान पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत का हाल बयान करते हैं कि आप कौन कौन सी सूरत किस किस नमाज में पढ़ते थे। देखिए, पहले तो सहाबा पे प्यार आता है ना, अल्लाह के नबी के एक एक चीज़ को उन्होंने महफूज किया, अगर वो सुन के अनसुना करते। आपने पढ़ लीजिए, हम इल्म की महफिल से भी उठते हैं ना, तो बहुत थोड़ी चीज़ें हमने लिखी होती हैं, जज्ब की होती हैं, याद की होती हैं। अगर साहब अभी हमारी तरह केयरलेस एटीट्यूड होता, सुन लिया ना ठीक है, वो पता नहीं क्या कह रहे थे, हाँ वो कुछ नोट किया कुछ नहीं किया, तो क्या ये इल्म हम तक पहुंचता? नबी तो अपनी बात बताने का हक अदा कर गए, सहाबा ने भी कोई कमी नहीं की। तो ये जितना अहदीस का खजाना हमारे पास पहुंचा ना, ये अल्लाह के नबी के सहाबा की तरफ से हमें मिला। तो आइए देखते हैं और कोशिश करेंगे फिर इन नमाजों में हम भी यही पढ़ें। पहली चीज़ है सूरत इखलास। इसकी अहमियत, एक अंसारी मस्जिद कुबा में इमामत कराते थे, इनका मामूल क्या था कि सूरत फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ने से पहले सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत फरमाते। हर रकत में इसी तरह करते। मुक्तदियों ने इमाम से कहा कि आप पहले कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हैं, फिर बाद में दूसरी सूरत मिलाते हैं, क्या एक सूरत तिलावत के लिए काफ़ी नहीं है, या सिर्फ यही सूरत पढ़ा करें? यानी बिल्कुल वैसे ही शुबा लगा जैसे कि हमें भी लग सकता है, या फिर सिर्फ यही सूरत पढ़ा करें और कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत काफ़ी नहीं तो इसे छोड़ दें, किसी दूसरी सूरत की तिलावत किया करें। तो इमाम साहब ने जवाब दिया कि मैं कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत नहीं छोड़ सकता। मुक्तदियों ने ये मसला अल्लाह के नबी की इदमत में पेश किया, तो आपने उन सहाबी से कहा, और इनका नाम मास बिन मास था, शुरू में मैंने जिक्र किया, ये वही वाक्य है, तुम मुक्तदियों की बात क्यों नहीं मानते, इस सूरत को हर रकत में लाजमी क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत बहुत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस सूरत के साथ आपकी मोहब्बत आपको जन्नत में दाखिल कराएगी। ये बुखारी की रिवायत 774। माशाल्लाह। अब इससे दो तीन बातें, पहली बात है कि मोहब्बत की बिना पे सूरत पढ़ी अखलास तो ये तो जन्नत में ले जाएगी, लेकिन अगर आदत की वजह से पढ़ी या ये सोच के पढ़ी कि और कुछ पढ़ ही नहीं सकते तो फिर गड़बड़ है। आज हम भी कुल वल्लाह ही पढ़ते हैं, आमतौर पे हमारे कल्चर के 90% लोग शायद सिर्फ कुल वल्लाह ही पढ़ते होंगे, फर्क है नीयत का, ठीक है। दूसरी बात देखिए जो बड़ी अहम है, ये भी एक मुख्तलिफी मसला है बास मसालिक में, और वो क्या है कि नमाज में सूरतों को तरतीब से तिलावत करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, सूरत इखलास तो बिल्कुल थर्ड लास्ट सूरह है कुरान पाक में, उसके बाद दूसरी कोई सूरत पढ़ते होंगे तो वो तो पीछे थी ना। तो आज एक सवाल और अपने जहन में से निकाल दीजिए कि क्या नमाज पढ़ते हुए तरतीब के साथ सूरतें पढ़नी है? मसलन आप देखिएगा, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद आप चलिए पहली रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, दूसरी रकत में आप सूरत वत्तीन वज़ैतून पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? किसी ने इस बात पे टोका किसी को मेरे सामने, फिर मुझे पता चला कि ये भी कोई इशू है। कहने लगी, नहीं आप तरतीब से पढ़ें, मसलन पहली रकत में अगर कुरान पाक है तो वो पिछले पारों से पढ़ें, दूसरी रकत में उससे अगले पारे की, और इसी तरह फिर आगे चले, ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मुगालता है, ठीक है। एक साहबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा एक पड़ोसी रात के क्याम में सूरत फातिहा के बाद सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करता है, دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا، آپ نے فرمائے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ روایت بخاری کی 5013 ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ جی اجر میں، یہ نہیں کہ اب 3 دفعہ پڑھے تو 1 قرآن کا ثواب، 2 دفعہ پڑھنے تو 6 قرآن کا ثواب، ایسا نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کا 1/3 ٹاپک توحید ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ثواب دینے سے نہیں چوکتا. آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میں نے 1 دفعہ پڑھا تو مجھے 10 بار پڑھنے کا اجر مل گیا، تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ ہر چیز آسان ہے، ٹھیک ہے. نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت آپ کیسے کرتے تھے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نمازوں میں سورت اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورت غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. سیدنا نعمان بن بشیر نے کہا، جب عید اور جمعہ ایک ہی دن میں جمع ہو جاتے پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے. روایت دیکھ لیجئے، پھر آپ کو اور بھی اچھا لگے گا. مسلم کی روایت ہے 878. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس دن پھر جمعہ پڑھنا بھی ضروری نہیں. نہیں ضروری، لیکن مسجدوں میں تو ہوگا نا، اور سیم صورتیں اس میں اور سیم صورتیں اس میں، کیوں؟ لکھ لیجئے گا، یہ بہت ہی بہتر بات ہوگی کہ بڑے مجموعوں میں جو صورتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا، اس میں عموماً تذکیر ہوتی تھی، مسائل نہیں ہوتے تھے، اور آخرت کی بات، جنت جہنم کی. اور آپ نے اگر یہ دونوں صورتیں ترجمہ تفسیر سے پڑھی ہوئی ہیں تو آپ خود ہی جانتے ہوں گے کہ غاشیہ تو ویسے قیامت کا نام ہے، اور سورۃ اعلیٰ کا بھی تو بنیادی پیغام یہی ہے نا کہ دنیا کی محبت میں کھو کر انسان آخرت کو نہ بھول جائے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت ہے عبیداللہ بن نبی رافع سے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا. وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورت جمعہ اور منافقون پڑھی. پھر فرمایا کہ میں نے یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنی ہیں. سبحان اللہ، یہ روایت ہے مسلم کی 877 نمبر کی. تو کیا پتہ چلا کہ یہ دو صورتیں آپ سوچیں کتنی لمبی ہے. سورہ منافقون تو تقریباً 3 پیجز کی ہے، سورہ جمعہ چھوٹی ہے. تو لیکن یہ ایک چیز مل گئی کہ اللہ کے نبی یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں سورت قوف والقرآن المجید اور سورت قمر یعنی اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے. تو ظاہر ہے آپ آج آپ میں تو نہیں پڑھاتے، لیکن جو مرد پڑھاتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی بھی اور پتہ لگ بھی جائے ادھر، تو کوئی بری بات نہیں. یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے 891، تو یہ صورتیں پڑھانی چاہیے، اور یہ بھی دونوں اچھی خاصی لمبی صورتیں ہیں. جمعے کے دن کیا پڑھتے تھے اللہ کے نبی؟ دیکھیے گا آپ شروع سے، جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ، کون سی والی؟ الف لام میم تنزیل الکتابی، یعنی جو رات کو ہم پڑھتے ہیں، یہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے، اور سورت دہر جس کو سورت انسان بھی کہتے ہیں، حل اتال الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ پوری سورت پڑھتے تھے، اور یہ روایت ہے بخاری کی 891 اور مسلم 879. کتنی لمبی ہے آپ کو تھا؟ سورت سجدہ تقریباً 3 صفوں کی ہے، اور سورت دہر بھی آلموسٹ 2 صفوں سے زائد کی ہے. تو یہ تو فجر کی نماز کی قرأت، ہم تو قل ھو اللہ پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے جائیں. پھر اس سے آپ دیکھیں، یہ تو جمعے کے دن کی تھی نا، آج بھی ماشاء اللہ جو مسجدیں اسلاف کے طریقے پہ ہیں تو وہ یہی صورتیں پڑھاتے ہیں معمولی عام طور پہ، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت کا اجر بھی مل جاتا ہے اور لوگوں کو ورائٹی بھی مل جاتی ہے. اچھا مسجد میں جب جاتے ہیں مرد تو آپ آتے ہیں پہ ان کے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی صورت پڑھی، پوچھا کریں. یہ سوال بھی آپ کے مردوں کو ضرور قرآن پاک کو سمجھنے میں مائل کرے گا، کیونکہ جب آپ پوچھتے ہیں کون سی صورت پڑھی، پھر یہ پڑھی، اور آپ کو اگر اس کا ترجمہ آتا ہے پھر آپ تھوڑی تھوڑی اس کی باتیں بتا دیں. اور اگر مردوں کو نہیں سمجھ آتی یا ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا پتہ نہیں کون سی تھی، تو ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اچھے طریقے سے گھر کا ماحول علمی ماحول میں ڈھل سکتا ہے. پھر اسی طرح سے نماز فجر میں تلاوت، یعنی اب عام نماز فجر کوئی بھی دن کی، اس میں جابر بن سمرہ سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورت قوف، وہی سیم جس کا اوپر ذکر ہوا، قوف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد والی نماز میں تخفیف کرتے تھے. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 458. مراد کیا ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں 2 بڑی صورتیں اور آخری 2 رکعتیں جلدی پڑھتے تھے. क्योंकि शुरू में इंसान फ्रेश होता है, बाद में थकन होने लगती है या कुछ भी, तो फिर पता चला कि पहली में ज़्यादा लंबी कर लेते, बाद में छोटी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मक्का फतह होने के बाद फजर की नमाज पढ़ाई। अब ये रावी क्या कहते हैं कि फजर की नमाज पढ़ाई, सूरत मोमिनून शुरू की, यहाँ तक कि मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम और ईसा का जिक्र आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांसी आ गई और आप रुकू में चले गए। अल्लाह अकबर। आज आपका ये काम है, बाद में मुसहफ खोलिएगा और ये सूरत देखिएगा कि सूरह मोमिनून में मूसा और ये हारून अलैहिस्सलाम और ईसा का जिक्र कहाँ था। आपको पता लग जाएगा लंबी नमाज क्या होती है। और रिवायत जो आपके सामने है, सही मुस्लिम 455। अल्लाह हमें भी इतनी लंबी लंबी सूरतें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अमर बिन हुरैस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज फजर में वल्लैल इज़ा असअस यानी सूरत तकवीर पढ़ते हुए सुना। सहाबा कितने हरीस थे ना आपकी बात को नोट करने और आगे लेके जाने के। और ये मुस्लिम की रिवायत है 456। फिर इसी तरह से उकबा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ये सफ़र में और आपकी ऊँटनी की मुहार पकड़ी हुई थी इन्होंने। आप सफ़र में फजर की नमाज के लिए उतरे तो आपने नमाज में सूरत फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरत नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। यानी कभी लंबी भी पढ़ते थे तो कभी छोटी भी पढ़ते थे। कोई बुरी बात नहीं है छोटी पढ़ना। और सूरत नास और सूरत फलक तो वैसे ही मुअव्वज़ा तईन है और सूरत इखलास में तो इखलास भरा हुआ है। तो ये सूरतें छोटी नहीं हैं, लेकिन कहने का मुराद ये है कि आदत ये नहीं होनी चाहिए कि छोटी समझ के इनको पढ़ें। हाँ, इनकी अहमियत, इनसे मोहब्बत, इनके मजमून को रख के सामने पढ़ते हैं तो कोई कबाहत नहीं। और ये रिवायत निसाई की 553 और अबू दाऊद 1462 और इसी तरह मुस्तदरक हाकिम में 240 जिल्द 1 में है, ठीक है। इब्ने खुजैमा में भी है, हदीस नंबर 534। तो बात का खुलासा क्या निकला? कोई भी सूरत पढ़े समझ के पढ़िए। और आपने ये नोट किया होगा कि सूरत फलक और नास सफ़र में पढ़ते थे और सफ़र में तो वैसे भी सहूलत है बहुत सारी, ठीक है। इस तरह माज़ बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर में दोनों रकतों में सूरत जिलजाल यानी इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इसकी तिलावत फरमाई। ये रिवायत अबू दाऊद की है 816। और इसी तरह से इमाम नवी ने किताब अल मजमू में जिल 3 384 में इसको सही कहा है। चलिए, फजर की जो दोनों सुन्नतें हैं उसमें आप हल्की किरत फरमाते हैं। यहाँ तक हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे शुबा गुजरता कि शायद आपने सूरत फातिहा भी नहीं पढ़ी। सुबहान अल्लाह। ये बुखारी की रिवायत है 1171 और मुस्लिम 724। तो गोया के सुन्नतों में छोटी सूरत भी पढ़ी आपने। आप सुन्नतों की पहली रकत में सूरत काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। ये रिवायत है सही मुस्लिम की 726। अब आप नोट करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है जितना भी है। देखिए, अदाएं हैं, मोहब्बतें हैं। आज लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट, सिंगर्स, अदाकारों की छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं। वो ये चाय पीते हैं, वो ये जूता पहनते हैं तो देख के लोग नहीं चल पड़ते। तो क्या हमारे नबी की सुन्नतें और आपके तरीके इस काबिल नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हम आपकी इन बातों को सुन्नत समझ के अगर पढ़ेंगे तो अजर नहीं पाएंगे? तो हमेशा अपने नबी से मोहब्बत का हक अदा कीजिए। सहाबा तो खरबूजा नहीं खाते थे जब तक पता न लग जाए कि अल्लाह के नबी ने कैसे खाया। अगर कोई बात सुनी और उस वक्त अल्लाह के नबी की कमीज़ का बटन खुला होता तो सहाबी जब वो हदीस बयान करते तो अपना बटन खोल देते। और अगर किसी बात पे अल्लाह के नबी मुस्कुराए, दाढ़े दिख गई यानी साइड के जो दांत होते हैं वो दिखे, तो सहाबी भी उसको बयान करते हुए इतना ही मुस्कुराए कि उनके भी दिखे ये थे मोहब्बत करने वाले। वो दावे नहीं ज़्यादा करते थे, करके दिखाते थे। इसी तरह फजर के अब देखे हमें कितनी चॉइस मिल गई ना। तो आपका मेरा अमल क्या होना चाहिए, ज़रा सम अप करते हैं। क्या आप इन सब में से कभी कोई पढ़ लीजिए, कभी कोई पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि असर और जोहर की नमाज में भी अल्लाह के नबी की किरत का कोई खास अंदाज था। तो अबू कतादा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जोहर और असर की पहली दो रकतों में सूरत फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ते और आखिरी दो रकतों में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ते थे। और कभी कभार हमें एक आदायत बुलंद आवाज से पढ़कर सुना देते थे। ठीक है, अब चूंकि देखिए इसमें सिरी नमाज है ना, यानी ऊंची आवाज से नहीं है, तो फिर अल्लाह के नबी कोई सूरत पढ़ते और दो रकतों में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ते। कभी कभार हमें एक आध आयत बुलंद आवाज से पढ़कर सुनाते, इससे क्या पता चला? वही जो बात आपको था ना, कभी आहिस्ता कभी ऊंचे। सहाबा को कैसे पता चलता अल्लाह के नबी क्या पढ़ रहे हैं? बस आप पढ़ते ही इजाजुलसिलसिल वक़ालसान, इस तरह, यानी बीच का कुछ हिस्सा थोड़ा सा ऊंची पढ़ते तो ज़ाहिर सात सहाबा पढ़ ही रहे होते थे तो उनको भी आवाज़ आ जाती थी। तो इससे क्या पता चला कि आखिरी दो रक्तों में सिर्फ सूरह फातिहा भी पढ़ी जा सकती है और कुछ और भी। ये भी बहुत सवाल पूछते हैं साथी कि क्या तीसरी रकत जो, यानी किसी भी नमाज में जब चार रकत पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी में कुछ पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े तो भी ठीक है। ठीक है, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी है। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर में सूरत लैल यानी वल लैल इज़ा यक्षा पढ़ते। एक और रिवायत में कि सूरत आला सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला और असर में भी इसकी मानिद की सूरत पढ़ते थे और फजर में लंबी सूरतें पढ़ते थे। ये रिवायत मुस्लिम की है 460। इससे क्या पता चलता है कि एक एक चीज़ की अपनी जगह अहमियत है और जब हम उसी की सोच से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी अजर मिलेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये जो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत लैल पढ़ते और सभी हिस्मा पढ़ते और असर में भी और लंबी, तो ये सहाबा का इतना इंटरेस्ट लेना भी दिखाता है कि अल्लाह के नबी की नमाज में, आपकी इबादत में इतना इंटरेस्ट था, आपको देखते रहते थे कि आप क्या करें और फिर हम भी वही करें। और ये रिवायत सही मुस्लिम में 460 की रिवायत थी। फिर इसी तरह जाबिर बिन समरा की एक रिवायत में कि अल्लाह के नबी जोहर और असर में सूरत बुरूज यानी वस्समा इज़ातिल बुरूज और सूरत तारिक वस्समा वत्तारिक पढ़ते थे। इसकी भी सनद ले लीजिए, ये अबू दाऊद की रिवायत है 805 और इसी तरह इब्ने हब्बान 465 है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। अल्लाह के नबी जोहर की आखिरी दो रकतों में 15 आयात के बराबर किरत फरमाते थे। जी, सही मुस्लिम 452। ठीक है, तो आप 15 आयतें किस किस में, इसको आप नोट कर सकते हैं कुरान पाक की। मुराद यह है कि इस तरह की कैफियत होती थी। क्या पता चला कि जोहर की आखिरी दो रकतों में सूरह फातिहा के बाद किरत मसनून है और कभी आप आखिरी दो रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा की किरत भी फरमाते थे। देखिए ये वैरायटी दिख रही है, हम तो छोटी छोटी बात पे झगड़ने लगते हैं ना और दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो रिवायत थी ये बुखारी की रिवायत 776 और मुस्लिम में 451 नंबर की रिवायत है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि नमाज असर की पहली दो रकतों में हर रकत के अंदर 15 आयात तिलावत फरमाते, बिल्कुल यही अमल जोहर पे भी था, और आखिरी दो रकतों में सिर्फ फातिहा पढ़ते। ये रिवायत बुखारी की 776 और मुस्लिम 451। अबू मामर ने हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर में किरत करते थे? हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, हाँ। हमने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ? तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि आपकी दाढ़ी की जुम्बुश से। सुभान अल्लाह, यानी जब कोई पढ़ता है या थोड़ी सी आवाज़ आती है तो दाढ़ी भी तो हिलती है ना। और ये रिवायत बुखारी की 777 थी। क्या पता चला? खुलासा कर देती हूँ कि जोहर और असर की नमाजों में अल्लाह के नबी सिरी नमाज यानी बगैर आवाज़ के किरत करते थे। कभी आपकी किरत तवील होती, बाज़ औक़ात जोहर की जमात की इकामत हो जाती और कोई शख्स अपने घर से बकी कब्रिस्तान की जानिब कज़ाए हाजत के लिए जाता, वहां से फारिग होकर घर आता और वुजू करके फिर मस्जिद में आता, तो अभी तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत ही में होते। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुस्लिम की रिवायत 454। और आप में से जो लोग देख कर आए हैं जन्नतुल बकी तक, अगर आप आज भी बाबे जिब्राइल से निकलें और आगे जाकर वापस आएं तो हमारी तो दो नमाजें हो जाएं उस वक्त में। अल्लाह के नबी का हुजरा वहां देखिए, जहां मिंबर है वहां पढ़ाते थे, वहां से निकलकर पूरा दरवाजे कवर करते निकलते बाहर आएंगे, बाहर से निकलकर फिर बकी तक जाएंगे। अब तो बकी बाउंड्री वॉल में करीब है, असल कब्रें तो दूर हैं, फिर वहाँ कज़ाए हाजत से फारग होकर अपने घर जाते, वहाँ से वुजू करते फिर आते। क्या पता चला कि इमाम को बाद में आने वालों की रियायत करते हुए पहली रकत में तिलावत तवील करनी चाहिए। कभी आपको भी मौका मिला हो ना, तो आप देखते हैं कि कोई साथी अभी आए हैं तो आप थोड़ी सी लंबी किरत कर ले ताकि उनकी रकत हो जाए। इस्लाम क्या छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें सिखाता है, और हम पता नहीं किन चीज़ों में पड़े रहे सारी ज़िंदगी कि हमने इन चीज़ों को समझना ही ना चाहा। फिर इसके बाद आप देखिए कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि आप पहली रकत को इतना लंबा इसलिए करते थे कि नमाजी पहली रकत में ही शामिल हो सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें ऐसे अखलाक दे दे। हाँ, ये अबू दाऊद की रवायत है 800, बुखारी में 779 और मुस्लिम 451। अच्छा, इसका इत्तफाक आपको शायद कभी पढ़ने पढ़ाने में हुआ हो, मुझे कई दफ़ा ऐसा हुआ। अमूमन लोग क्लास के शुरू के वक्त पे ज्वाइन नहीं कर पाते बावजूद कोशिश के, लेकिन हमारा कल्चर है 5-6 मिनट लेट होना ना। तो जब दौरे कुरान शुरू होता है तो मेरे दिल में हमेशा ये कसक होती है कि बाद में जो इतने सारे लोग आ जाते हैं और शुरू में कम होते हैं तो इनका वो छुटे ना। तो अमूमन आप देखेंगे हर साल के दौरे कुरान में शुरू के हिस्से में ज़्यादा तफसील से बात हो रही होती है। उसमें ये होता है कि सब मिल जाए, और फिर दहरे के वक्त तो उसमें निकल गया, तो फिर आखिरी हिस्से में कुछ थोड़ी सी दहरे तेजी दिखती है। तो एक किस्म का ये अच्छा ही अमल है कि चलो सबको साथ लेकर चलें, और एहसास होना चाहिए। हम होते कहते हाँ हाँ आप जाइए, आप तो बस आते ही लेट हैं, शौक ही कोई नहीं, पता नहीं दुनिया में खोए। पर देखिए, दीनदार का अखलाक जो है ना, उसके इल्म से भी भारी होता है। लोग आपका इल्म देखकर भी आएंगे, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। इल्म उनको बहुत जगह मिल जाएगा, लोगों को आपका अखलाक चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है। अगर आप ये प्यार देंगे ना, तो लोग दूर से भी आपके ही पास आ जाएंगे कि कोई बात नहीं, उनसे मिलकर खुशी होती है। फिर इसी तरह असर भी हो गई, जोहर भी हो गई, फजर भी हुई, आगे चलते मगरिब। मगरिब की नमाज में आपकी किरत कैसी थी? हजरत जुबैर बिन मोतम रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, ये भी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को नमाज मगरिब में सूरत तूर पढ़ते हुए सुना। और ये रिवायत बुखारी की है 765 और मुस्लिम में 463। और सच बताऊं, जब भी कभी हरम में नमाज पढ़ने का मौका मिला, ख्वाहिश होती है, और वो भी अगर इमाम सुदेस की बारी हो उस दिन, कि वो नमाज मगरिब में सूरत तूर पढ़े। आज जाकर सुनिएगा अपने तौर पे से, मगरिब की नमाज के बाद अच्छी सी आवाज में सूरत तूर सुने। क्या वो मल गजा, बाहर अंधेरा रोशनी, एक उस सूरत के अंदर तो वाकई एक जुम्बुश है, हिल जाता है बंदा झटकों पे झटके, और ऐसे लगता है कि आसमान भी घूम रहा है, जमीन भी हिल रही है। तो ये सारी चीजें आपको मुझे उस वक्त विजुअलाइज करके दिल के ऊपर एक बोझ और एक दिल पर रिक्कत तारी करने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन हमारा मसला भी तो ये ना कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन बहरहाल इसके अल्फाज बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत सौती हुसन है सूरत नजम और सूरत तूर में, साथ साथ ही हैं दोनों सूरतें। इसी तरह उम्मे फजल कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को नमाज मगरिब में वल मुरसलाती उर्फा पढ़ते हुए सुना। जी, ये सूरत भी आप देखते हैं कि 29वें पारे में है, और ये रिवायत है सही बुखारी की 763 और सही मुस्लिम में 462 है। तो ये गोया के आपका मुख्तलिफ वक्त पे ये सारा मामला था। बस गैर मुस्लिम तक अल्लाह के नबी की किरत जानते हैं कि किस वक्त क्या पढ़ाते थे, क्योंकि इतना बड़ा तो मक्का था नहीं। इवन जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनके भी तो घर साथ ही थे ना, तो कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस काबा के गिरदा पढ़ते थे लोग अपने घरों में से भी। बाज दफा आपकी आवाज़ सुन लेते होंगे, तो लेकिन ये गवाही दी इन्होंने उम्मे फजल ने। इस हज़रत आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब सूरत आराफ के साथ पढ़ी। आपने सूरत की कुछ मकदार पहली रकत में और बकिया मकदार दूसरी रकत में पढ़ी। जी, ये रिवायत है निसाई की 992 और इमाम नवी की किताब अल मजमू की जिल्द 4 383 में ये मौजूद है। चलिए, ये भी बात हुई, आपने कभी पढ़ी सूरत अल आराफ पूरी की पूरी दो रकतों में? कैसे हम अपनी नमाजों को कबूल करवाएं? मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि जो नमाज पढ़ते हैं इसको भी माफ़ कराने के लिए और इसकी गलतियाँ दूर कराने के लिए हमें फिर इस्तग़फ़ार करनी पड़े। यानी हमारी तो नेकियाँ भी ऐसी होती हैं बसा औकात कि नमाज के अंदर नेकियाँ ये करते करते गुनाह करते हैं। कहाँ गुनाह की महफिलें, लोग कहते हैं गुनाह की महफिलें छोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ कीजिए कि जो नेकियों की महफिल है ना, उसके अंदर ना गुनाह हो हमसे, क्योंकि जब वो गुनाह होते हैं ना, तो फिर उसको तो बख्शवाने की हम फिक्र ही नहीं करते, क्योंकि जब दुनियादारी की कोई महफिल या गुनाह की होती है तो हमें सबको पता होता है हम क्या करके आए हैं, शर्मिंदगी और गिल्ट भी होगा। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ आप देखिए कि जब हम नेकी के नाम पे कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें उसका एहसास भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को जिंदा कर दे। अब चलते हैं आखिरी नमाज, और वो है नमाज ईशा। देखते हैं कि इसमें आपने कौन सी सूरत पढ़ी। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से पता चलता है कि आप नमाज ईशा में व तीन व जैतून पढ़ते थे, और कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ज़्यादा खुश आवाज़ किसी को नहीं पाया। हो भी कैसे सकता है, आप जैसी प्यारी आवाज़ कैसे किसी की होगी, क्योंकि आपके सीने पे तो कुरान उतरता था, तो आवाज़ में सोज तो आएगा। रिवायत ये बुखारी की है 769 और मुस्लिम 464। हमें इसे क्या सीखना है कि जब भी कुरान पढ़ें तो दिल के साथ पढ़िए, अंदर उतरे। और आज भी अगर आप वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन इसको एक रिदम में पढ़ें ना, तो इसमें भी बहुत ही सौती हुसन पाया जाता है। इस तरह माज़ बिन जबल ने फरमाया कि ईशा की नमाज में सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, यानी हज़रत माज़ बिन जबल नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह बकरा शुरू कर दी। मुक्तदियों में से खेती बाड़ी का काम करने वाले शख्स ने सलाम फेर दी, यानी पहली फेर दी। फिर इसने रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हम लोग ऊँटों वाले हैं, दिन भर मेहनत मशक्क़त करते हैं। हज़रत माज ने पहले आपके साथ नमाज पढ़ी, फिर हमारे पास आए और उन्होंने ईशा में सूरत बकरा शुरू कर दी। मैं दिन भर का थका मांदा था, मुझे लंबी किरत बोझल मालूम हुई। अल्लाह अकबर। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, आप लोगों को नफरत दिलाते हो और फितना खड़ा करते हैं। आपने ये बात 3 मरतबा दोहराई, फिर फरमाया, जब तुम जमात कराओ तो सूरत शम्स व शम्सी व दुहाहा, और सूरत लैल व लैली इज़ा यक्षा, और सूरत आला सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला की तिलावत करो, इसलिए कि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और ज़रूरतमंद भी नमाज अदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? और ये रिवायत लिख लीजिए बुखारी की 705 और मुस्लिम की 465। क्या पता चला कि ईशा की नमाज की किरत भी इतनी लंबी थी, और साथ ही हदीस ने नमाज की इमामत कराने वालों को वॉर्न कर दिया, पीछे जो लोग खड़े हैं उनका भी ख्याल रखिए और खूब समझ लें कि नमाज में मुक्तदियों के पेश नज़र तख़फीफ़ करना सुन्नत है।